हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे इससे पिछले की कहानी में तो आपने सुना था कि मैं वाइन कंपनी के मालिक स्टीवन संग स्ट्रिप क्लब में गई थी। वहाँ मैं नंगी होकर नाची और सबके सामने चूदी। वो मुझे छोड़ने एयरपोर्ट तक आया। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मेरी ये ट्रिप सक्सेस और सेक्स दोनों से भरी है। और फिर स्टीवन का प्रपोज़ल मैं चलते चलते सोच रही थी कि अगर मैं स्टीवन का प्रपोज़ल स्वीकार कर लूं तो ज़िंदगी कितनी रंगीन हो जाएगी। अपनी इसी सोच के साथ मैं सिक्योरिटी गार्ड की तरफ बढ़ रही थी। अपना कैबिन का सामान मशीन में डाल मेरा बोर्डिंग पास स्कैन हुआ और मैं मेटल डिटेक्टर से गुजरी तो मुझे एक सिक्योरिटी वाले ने रोका और एक तरफ खड़ा होने को कहा। अनजान देश में ज़ुबान लड़ाना अपने आप पर ही उल्टा पड़ सकता है और मुझे इस तरह का कभी रोका नहीं गया था, तो मैं निश्चिंत थी कि ज़रूर ही कुछ गलतफहमी होगी। 10 मिनट के बाद एक कस्टम ऑफिसर आया और मुझे साथ चलने को कहा। मैं उसके साथ चली गई। उसका दफ्तर एयरपोर्ट के पास ही था। दफ्तर में पहुंचने के बाद ही उसने मुझे बैठने के लिए कुर्सी दी और एक फ़ोन किया। फ़ोन में ऑफिसर ने फ्रेंच में कहा, माल हाथ लगा है, जल्दी आओ। वो नहीं जानता था कि मुझे भी फ्रेंच आती है। उसने अंग्रेज़ी में मुझसे मेरा पासपोर्ट मांगा और मुझसे सवाल करने लगा। पहले ऑफिसर ने बोला, मेरा नाम रिचर्ड है और मैं इस एयरपोर्ट पे कस्टम ऑफिसर हूँ। मेरा दूसरा साथी शॉन आपके कागजात की तहकीकात कर अभी आ जाएगा। मैंने भी उसे नहीं बताया कि मुझे फ्रेंच आती है और मैं इंग्लिश में ही बात करने लगी। रिचर्ड ने मुझसे पूछा, तो कहाँ से आ रही हैं आप। मैंने बोला, पेरिस से। उसने बोला, कितने दिन के लिए आई थी आप पेरिस और किस काम से। मैंने बोला, जी मैं एक बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में आई थी और कल बॉर्डो में मेरी एक मीटिंग थी जिसके बाद मैं पेरिस आ गई थी और अब वापस अपने देश लौट रही हूँ। क्यों, क्या हुआ ऑफिसर, कुछ प्रॉब्लम है क्या। उसने मेरी बातों को अनसुना करके मुझसे पूछा, किस तरह का बिजनेस। दूसरा ऑफिसर शॉन भी दफ्तर में आ गया था और मेरे पीछे खड़ा होकर मेरे सवाल जवाब सुनने लगा। अब मैं थोड़ा झिझकी, इतने सवाल मुझसे क्यों पूछे जा रहे हैं, कहीं मेरे दिए जवाबों में इन्हें कुछ कमी ना दिख जाए और फिर ये मुझे जेल में ना डाल दे। तब मैं बोली, जी मैं एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती हूँ, ये देखिए मेरा ऑफिस आईडी कार्ड। दूसरे ऑफिसर शॉन ने मुझसे मेरा आईडी कार्ड ले लिया और रिचर्ड ने बोला, इसकी परख हमें करने दीजिए और बातों को घुमाइए मत, मुझे ये बताइए कि किस तरह का बिजनेस करती हैं आप। मैं बहुत घबरा गई थी। तभी शॉन ने मुझसे बोला, क्या बात है, आपको पसीने क्यों आ रहे हैं, आप ज़रूर हमसे कुछ छुपा रही हैं। रिचर्ड ने अपनी आवाज़ तेज़ करते हुए मुझसे चिल्लाकर पूछा, हमें सच सच बताओ, किस तरह का बिजनेस करती हो तुम, अफीम, कोकन या फिर किसी और ड्रग्स का। मैं बोली, जी आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करती। तभी रिचर्ड ने मुझसे बोला, कोई बात नहीं मैडम आतिशी, आप ये बताइए कि क्या ये सामान आपका है। उसने मुझे मशीन में डाला हुआ मेरा बैग मुझे दिखाया। मैंने बोला, जी जी हाँ ये मेरा ही सामान है। तभी शॉन ने बोला, तो इसके अंदर का सामान भी आपका ही है ना। मैंने लड़खड़ाती जुबान से बोला, जी सामान मेरा है तो बैग के अंदर वाला सामान भी मेरा ही होगा। रिचर्ड ने चिल्लाते हुए साइड वाले टेबल पर ज़ोर से मारा और मुझे बोला, जितना पूछा जाए केवल उतना ही जवाब दो। पीछे से शॉन ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, घबराओ नहीं, अभी जो तुमने कहा उस स्टेटमेंट पर दस्तखत कर दो। मैं अंदर ही अंदर बहुत घबरा गई थी। मैंने अपनी कही बात पर साइन करने के लिए हामी भर दी। शॉन ने मेरे आगे कागज़ रखे और मैंने उस कागज़ पर साइन कर दिया। तब रिचर्ड ने मुझसे बोला, क्योंकि अब तुमने माना है कि ये बैग तुम्हारा है और इसके अंदर का सामान भी तुम्हारा है, तो अब हम इसे तुम्हारे सामने खोलेंगे। शॉन मेरा बैग खोलने लगा, उसमें से एक एक चीज़ें निकालने लगा। क्योंकि चेक इन बैग में बैटरी ले जाना मना है, मैंने स्टीवन का दिया हुआ वाइब्रेटर उस बैग में रखा हुआ था। वो धीरे धीरे एक एक कर सामान टेबल पर खोलने लगा। पहले उसने कैबिन बैग खोला जिसमें से जैकेट, चप्पल, ब्रा, पैंटी, ड्रेस, कुछ खाने पीने का सामान, ज्वेलरी, केप, मफलर और वाइब्रेटर और बट प्लग मिला। रिचर्ड ने वाइब्रेटर और बट प्लग को देखकर मुझसे बोला, क्या तुम जानती हो भारत में ये सब चीज़ें मना है, क्या तुम्हारे पास इसका बिल है। मैंने उन्हें सच बता दिया और बोला, सर मुझे ये किसी ने तोहफे में दी है, मेरे पास इनका बिल नहीं है। पर्स खोलना स्टार्ट किया और उसमें से कुछ मेकअप पाउडर कंघी कच्छियाँ चाबी मिली और मेरी कुछ ज्वेलरी। अंत में उसके हाथ में एक पुड़िया लगी जिसमें एक सफ़ेद कलर का पाउडर था। उसने वो सूंघा और कहा, ये कोकेन है। तभी रिचर्ड ने बोला, ये सब सामान तुम्हारा है, सही कहा ना, ये कोकेन भी तुम्हारी है। जानती हो ना फ्रांस में कोकेन रखना बेचना बिल्कुल सजा है। मैं बिल्कुल घबरा गई थी। मैंने बोला, सर सर ये कोकेन मेरी नहीं है, मेरे बैग में कैसे आई मुझे कुछ मालूम नहीं है। तभी शॉन ने बोला, तुमने अभी इस पेपर पर साइन किया और बोला कि इस बैग में जो भी सामान है वो सब तुम्हारा है, तो फिर उस हिसाब से ये कोकेन भी तुम्हारी हुई। तभी रिचर्ड ने बोला, इसके सारे बैग्स चेक इन करने होंगे। शॉन ने एक कॉल किया और फ्रेंच में मेरे सारे बैग्स को लाने के लिए बोला। रिचर्ड अब बहुत गुस्सा हो गया था और वो मुझे बोलने लगा, सच सच बताओ कितनी कोकेन है तुम्हारे पास और किससे खरीदी है तुमने ये सब और किससे बेचने जा रही हो। तभी शॉन ने फ्रेंच में कहा, ये शायद काफ़ी घबरा गई है, पहले इसकी तलाशी लेते हैं, पूछताछ तो हम बाद में भी कर सकते हैं। और फिर मुझसे अंग्रेजी में कहा, जब तक तुम्हारा बैग आता है तब तक हम तुम्हारी तलाशी लेंगे। और रिचर्ड ने मुझसे बोला, चल चल जल्दी अपने कपड़े उतार। शॉन ने बोला, घबराओ नहीं, हम केवल अपना काम कर रहे हैं, सहयोग नहीं करोगी तो तुम पर शक बढ़ता जाएगा, इसीलिए जितना बोला जा रहा है उतना करो। वे दोनों ही अफ्रीकी मूल के फ्रांसीसी थी। उनके गहरे रंग के चेहरे पर केवल उनकी बड़ी बड़ी आंखें ही चमक रही थी और उनके सफ़ेद दांत किसी को भी अंधेरे में डराने के लिए काफ़ी थे। दोनों ही हट्टी कट्टी 6 फुट के मजबूत शरीर वाले थे। मैं डर गई और धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगी। रिचर्ड बहुत कड़क था। उसने फिर से चिल्लाते हुए कहा, हमारे पास पूरा दिन नहीं है तलाशी के लिए, जल्दी उतार नहीं तो मैं उतारूंगा। मैं घबरा गई और मैं जल्दी जल्दी उतारने लगी। पहले मैंने अपना स्वेटर निकाला, उसके बाद उसके अंदर का टॉप और अब मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रा में थी। रिचर्ड बोला, तुम बहुत टाइम ले रही हो। और उसने मेरी पैंट पकड़कर नीचे से एक झटके में उतार दी। अब मैं केवल नेट वाली ब्रा और पैंटी में थी। मुझे शर्म आ रही थी और डर भी लग रहा था, बिना किसी गलती के जेल जाने से डर लग रहा था। शॉन मेरे पास आया और बोला, अब हम तुम्हारी तलाशी शुरू करेंगे, तुम्हें पूरा सहयोग करना होगा, नहीं तो हमें मजबूरन तुम्हें जेल भेजना होगा और फिर कोर्ट के ऑर्डर के बाद तुम्हारी तलाशी होगी। कुछ भी कर लो, तुम तलाशी से तो बच नहीं सकती। वहीं से पीछे से रिचर्ड बोला, देखा जाए तो तुम्हारी ब्रा और पैंटी भी उतारनी होगी। शॉन ने रिचर्ड को बोला, आराम से बात हो सकती है। और फिर मुझसे पूछा, तुम पूरा सहयोग करोगी ना? मैंने हाँ में सर हिला दिया। इसके अलावा मेरे पास और कुछ चारा भी नहीं था, मैं क्या कर। अब मुझे भी इस खेल में मजा आने लगा था। दो अनजान हट्टे कट्टे मर्द मुझे नंगी कर रहे थे। मेरे पास आया और मुझे मुंह खोलने के लिए बोला। उसने अपने हाथों में ग्लव्स पहने थे और अब वो मेरी मुंह की तलाशी लेने लगा, मेरे गाल मेरे दांत वो सब कुछ अंदर से महसूस करने लगा। शॉन भी मेरे पास आकर पहले मेरे कंधे और बाजू को दबाकर चेक करने लगा, फिर उसने मेरी ब्रा में बंधी चुच्चियों को कसकर पकड़ लिया और मसलने लगा। तब शॉन ने मुझसे अंग्रेजी में कहा, मुझे तुम्हारी बड़ी बड़ी चुच्चियों पर शक हो रहा है, इतने बड़े और सुडोल चुच्चे तो सिर्फ एक सर्जन ही दे सकता है, मुझे चूस कर पता करना होगा, चलो अपनी ब्रा निकालो। अब शॉन ने मेरे चुच्चों को कसकर मसलना शुरू कर दिया और एक तरफ के चुच्चों को अपने मुंह में भर लिया और वो ऐसे चूस रहा था जैसे आज ही दूध निकालेगा। मैं सर मेरी शादी नहीं हुई है और मुझे बच्चे भी नहीं हैं, मुझे दूध नहीं आता। तभी शॉन बोला, पर जब चुच्चों में ड्रग्स छिपाई हो तो निप्पल से रिसने लगती है, इसीलिए मुझे इसे बड़े अच्छे से निचोड़ कर चूस कर निकालना होगा। अब शॉन मेरे बूब्स को चबाने लगा, मुझे मज़ा आ रहा था। मेरे हाथ हवा में थे पर मुझे मन हो रहा था कि मैं शॉन की पेंट के अंदर अपना हाथ डालूं और उसका लौड़ा सहलाऊं। दो अफ्रीकी मूल के अफसर से चुदने के ख्याल में अब मेरी चूत चुमचुमाने लगी थी। ये तो मेरी भी दिल में दबी हुई ख्वाहिश थी, अफ्रीकी मूल के मर्द से चुदना, और आज तो शायद ये दोनों मुझे चूदने वाले थे। तभी रिचर्ड बोला, अरे मजे ले रही है, चूत पानी छोड़ रही है इसकी। मुझे ये तो समझ आ गया था कि ये दोनों आज मुझे नंगी करके पूरा पूरा मजा लेंगे। तभी शॉन फ्रेंच में बोला, यार इसकी चौड़ी गांड तो देख, ये जालीदार कच्छी में के क्या माल लग रही है। आ आ मेरा लंड तो पूरा खड़ा हो गया है। रिचर्ड फ्रेंच में बोला, अरे इतना चोदेंगे इसको मिलकर कि रो रो के चुदवाएगी। देखा नहीं वाइब्रेटर और बट प्लग लेके घूम रही है, इसके कई आशिक होंगे पेरिस में। रंडी है साली रंडी, सिर्फ चुदवाने आती होगी पेरिस। देख इसके पासपोर्ट में हर 3 महीने में आती है, साली को फ्लाई नहीं करने देंगे जब तक इसकी आज तोड़ ठुकाई नहीं करते। चल आ जा, अब इसकी चूत और गांड चेक करें। रिचर्ड ने अंग्रेजी में मुझे टेबल पर झुकने को कहा। मैं भी इनकी चाल समझ गई थी और अपना रोने का नाटक करने लगी और टेबल पर झुक गई। शॉन ने मुझसे बोला, अब हम तुम्हारे छेदों का चेकअप करेंगे, रिलैक्स। रिचर्ड अब मेरी चौड़ी गांड पकड़ कर मसलने लगा और शॉन ने मेरी कच्छी नीचे गिरा दी, और उसके बाद दोनों फिर से फ्रेंच में बातें करने लगे। रिचर्ड, यार तू सही कह रहा था, क्या गांड है इसकी। तभी मुझे मेरी चूत में उंगली जाती हुई महसूस हुई, और फिर उसके बाद तुरंत गांड में भी उंगली जाती हुई महसूस हुई। दो अफ्रीकी मूल के मर्दों के बीच अपने आप को खुद को सोचकर मैं एकदम उत्तेजित हो गई थी। मैं, ओ सर मेरी 4 बजे की फ्लाइट है, हो सके तो ये सब फॉर्मेलिटी हम जल्दी ख़त्म करें, मुझे वापस अपने देश जाना है। ये कोकिन सच में मेरी नहीं है, आपने गलत इंसान को पकड़ा है। तभी रिचर्ड ने अंग्रेजी में कहा, तुम्हारी गांड में कुछ छिपा हुआ महसूस हो रहा है, मेरी उंगली बस उसे छू पा रही है, मुझे कुछ लंबा घुसाना होगा। शॉन ने फ्रेंच में बात की, मुझे भी मारनी है इसकी गांड, कॉन्डम लगा के चोदना हाँ, बहुत बड़ी प्लेयर लगती है, और ये माल भी बहुत गर्म है, इसकी चूत पानी छोड़ने लगी है, इसकी गांड पे थूक और घुसा दे। फिर शॉन ने मुझसे अंग्रेजी में कहा, तुम्हारी चूत में भी कुछ महसूस हो रहा है, गांड की पूरी तलाशी होने के बाद तुम्हारी चूत की तलाशी होगी। रिचर्ड ने अपना लौड़ा मेरे गांड के मुंह पर लगाया, झुकी होने के कारण मैं नहीं देख पा रही थी कि उसका लंड कैसा था, पर जानती थी अफ्रीकी मूल के मर्दों का लंड एकदम बेहद मजबूत, कड़क, मोटा और नाक की तरह लंबा होता है। उसने जोर से झटका मारा तो मैं मेज के साथ आगे खिसक गई, मेरी जोर से चीख निकल गई, उइमा मर गई, आह सर मैं सब कबूल करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मेरी गांड से इसे निकालो। मैं गिड़गिड़ाने लगी, मेरी गांड के छेद में दर्द हो रहा है सर, प्लीज़। उसका मोटा सांड सा लौड़ा मेरी गांड में घुस चुका था। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी अभी तक की कहानी, इसके आगे की कहानी मैं अगले भाग में बताऊंगी। बाय।